जो हम लोग कर रहे थे उसमें हमने ये बताया था कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं जो हिस्ट्री में चेंज के जरिया बनते हैं, और उसके अंदर हमने एक व्यू जो है वो देखा था जो जियोग्राफी पर बेस करते हैं, दूसरा जो है वो रेस के ऊपर, तीसरा जो है वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी या इंडिविजुअल जीनियस के ऊपर, तीसरा जो है वो चौथा जो है वो रिलीजन, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कर चुके हैं, अच्छा अब अगर इकोनॉमिक्स हम कर चुके हैं तो फिर हम देखेंगे काइंड ऑफ चेंज, चेंज किस किस तरह की होती है, चेंज किस किस तरह की होती है, यानी कि ये जो फैक्टर ऑफ चेंज है, ये जो चेंज पैदा करते हैं वो किस तरह की होती है, चेंज कितनी तरह की हो सकती है, इसको हम पहले ब्रीफली कर चुके हैं, ब्रीफली हमने किया है, लेकिन अब हम उसको डिटेल के साथ, यानी कि ये कह देना कि तारीख में चेंज हो, तारीख कंसर्न है चेंज से, तो ठीक है चेंज, लेकिन चेंज किस नौयत की, चेंज कई तरह की हो सकती है। पहली तरह की जो चेंज है जो कि हिस्टोरिकली हमें मिलती है वो है चेंज पीरियोडिक, पीरियोडिक चेंज, हिस्ट्री में जो चेंज है वो कैसी है, पीरियोडिक चेंज, पीरियोडिक चेंज कैसी चेंज होती है, द चेंज विच द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, ऐसी चेंज जो अपने आप को बार बार दोहराती रहे वो चेंज जो है पीरियोडिक चेंज होती है। अगर आप देखें तो इसे आप अगर अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि इंडिविजुअल प्लेन पर या जर्नल प्लेन पर इसमें रेलेवेंस आपको दिखाई देगी। बुनियादी तौर पर ये आइडिया, इस चेंज का आइडिया जो है वो हेराक्लाइटेनियन, हेराक्लाइटस का, हेराक्लाइटस जो है वो हजरत HERACLITUS, हेराक्लाइटस जो है वो बेसिकली प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर है, हजरत ईसा की पैदाइश से तकरीबन 400 साल पहले का आदमी है। ये इसका जो बुनियादी ख्याल है वो सिर्फ हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में या हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव में चेंज का इशू नहीं है उसके लिए, बल्कि चेंज का तसव्वुर उसका मेटाफिजिकल है, मेटाफिजिक्स जो रियलिटी को वो डिफाइन करता है वो भी डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ चेंज, वो कहता है द रियलिटी इज फ्लक्स, रियलिटी चेंज ही होती है, लेकिन जो चेंज है वो किस नौयत की है, पीरियोडिक है। हिस्ट्री इज लाइक अ यो-यो, यो-यो होता है ना, एक बार यूं घूमता हुआ नीचे आता है और फिर एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाता है, तो वो पहले क्लॉकवाइज एक चक्कर कंप्लीट करता है फिर एंटी क्लॉकवाइज दूसरा चक्कर कंप्लीट करता है। तो ये जो चेंज का तस्वीर है बुनियादी तौर पर सेक्युलरिस्टिक कंसेप्शन है चेंज का। सेक्युलर कंसेप्शन क्यों है चेंज का, कि भाई हिस्ट्री की डायनेमिक्स और डायलेक्टिक्स जो है वो रिपीट पीरियोडिक है, तो इससे कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हो, यानी आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, एजेंसी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें, बल्कि एजेंसी जो है वो विक्टिम है उस प्रोसेस ऑफ चेंज का। अगर फर्ज किया कि तुमने अपने आप को एक ऐसे तारीखी दौर में पाया है जिसमें जो झुकाव है, जो बहाव है दौर का, उस दौर का वो हेट की तरफ है, बुराई की तरफ, तो वो उसी तरफ बहेगा। और अगर तुम एक ऐसे दौर में हो जिसमें तारीखी अमल का झुकाव या बढ़ाव या डायनेमिक्स जो है वो गुडनेस की तरफ है या लव की तरफ है, तो वो उसकी तरफ जाएगा। लिहाजा अगर वो बुराई की तरफ जा रहा है तो तुम एज एन इंडिविजुअल एजेंसी ऑफ द चेंज कोई ऐसा खास रोल प्ले नहीं कर सकते, और अगर उसका बढ़ाव या झुकाव जो है वो ईविल की तरफ है, गुडनेस की तरफ है, तो भी तुम कोई खास सिग्निफिकेंट रोल, यानी कि बुरे बुराई को शिकस्त होगी पैदर पे शिकस्त होती चली जाएगी, अगर झुकाव या तारीखी दौर का जो जोर है या बहाव है वो गुडनेस की तरफ है तो बुराई को शिकस्त पे शिकस्त होगी, और अगर वो झुकाव जो है वो अच्छाई की तरफ नहीं बल्कि बुराई की तरफ है तो अच्छाई की फोर्सेस को पैदर पे शिकस्तें होंगी। तो बुनियादी तौर पर ये जो शिकस्त और फतह है ये डायनेमिक्स डिटरमिन करेगी डायमेंशन ऑफ चेंज के वो किस डायरेक्शन में. अच्छा अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एजेंसी के यानी कि मैं एक तारीखी दौर में पैदा हुआ हूँ, अब मैं क्या बताऊँ कि ये तारीख की अमल का जो बढ़ाव या झुकाव है या डायनामिक्स है गुडनेस की तरफ है या इविलनेस की तरफ है, ये मैं कैसे बताऊँ. ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं तो खुद तारीखी दौर का हिस्सा हूँ, मैं कैसे बताऊँ. ये तो सिस्टम से बाहर ही कोई बता सकता है लेकिन मैं तो सिस्टम के अंदर ही हूँ. अगर मैं सिस्टम के अंदर ही हूँ तो अब मेरे लिए क्या है करने का काम, तो मैं जो अच्छाई है उसकी तरफ जिद्दोजहद करूँ. मेरी कामयाबियाँ और नाकामियाँ जो है वो मेरे बस में नहीं बल्कि वो तो चेंज की डायनेमिक्स से डिटरमिन करती है कि वो किस तरफ है. तो अगर फर्ज किया कि कोई डायनेमिक्स है हिस्टोरिकल प्रोसेस की और मुझे मालूम नहीं, तो मेरे लिए तो यही है कि मैं अच्छाई के साथ हूँ. ये और बात है कि अगर उस वक्त तारीखी अमल जो है वो अच्छाई की तरफ नहीं जा रहा, बुराई ही की तरफ जा रहा, तो आपको शिकस्त होगी, बेहतर का शिकस्त होगी. तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर चेंज के पूरे मैकेनिज्म को एज अ होल लिया जाए तो इसका मतलब है ना तो वो इंट्रिंसिकली गुडनेस को कम्प्लीट कर पाता है और ना इंट्रिंसिक ईवलनेस को वो कम्प्लीट कर पाता है, बल्कि वो पेंडुलम की तरह मूव करता है, स्विंग लेता है. जब बुराई अपनी इंतहा को पहुंचती है तो अच्छाई की तरफ सफर शुरू होता है और जब अच्छाई अपने उर्ज पे पहुंचती है तो बुराई की तरफ सफर शुरू होता है. तो इंसान का क्या रोल है कॉन्ट्रीब्यूशन में, एजेंसी ऑफ चेंज जो है तो जाहिर है कि इंसान ही, लेकिन वो विक्टिम होगा उस डायनेमिक ऑफ चेंज. जैसे मैं दो बात बता कि मुझे अगर ये नहीं पता कि अंजाम क्या है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वही करना चाहिए जो बेस्ट मैं कर सकता हूँ. अगर मुझे ये पता है कि अंजाम ये है तो फिर तो ये सवाल उठ सकता है कि हाँ यार ये तो झुकाव ही बुराई की तरफ है लिहाजा मैं कुछ भी कर लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन हो सकता है कि वही बुराई का उरूज का दौर हो और जब आप अच्छाई की जिद्दोजहद करें तो आप सक्सेस हासिल करना शुरू करें और पे दर पे कामयाबियों पे कामयाबियां आपको मिल. ये तो कभी पता नहीं चलेगा कि असल में तारीख कहाँ पे खड़ी है. क्यों? क्योंकि वो तो एजेंसी ऑफ द हिस्टोरिकल प्रोसेस तो वो खुद ही सिस्टम के अंदर ही है, वो बाहर के क्या करेगा. ये बात समझ आ रही है? तो उसमें यानी कि पैसिमिज्म नहीं है वो कि सेक्युलरिस्टिक है कंसेप्शन और मेटाफिजिकल फाउंडेशन है कि वो चेंज को हकीकत मानता है. तो बुनियादी तौर पर हकीकत ना तो इंट्रिंसिकली गुड है ना इंट्रिंसिकली बैड है, वो तो चेंज है. हाँ उसकी डायनेमिक्स कभी हेड की तरफ होती है कभी लव की तरफ होती है. सही है.
तो अच्छाई को जांचने का क्राइटेरियम क्या होगा?
अच्छाई को जानने का कोई क्राइटेरियम, जो प्रिवेलिंग अच्छाइयां हैं आपके माशरे के अंदर वो उसमें डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी और लोग उसको इख्तियार करना शुरू कर देंगे. लेकिन अगर आप कोई बताएं कि कोई भी अच्छाई इन इट सेल्फ एब्सोल्यूट है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बुनियादी तौर पर हकीकत तो चेंज है. अगर हकीकत चेंज है तो एब्सोल्यूटली तो ना कोई चीज गुड होगी ना एब्सोल्यूटली कोई चीज बैड होगी. एब्सोल्यूट मीन्स ट्रू फॉर ऑल टाइम. तो जो वाहिद सच्चाई है ट्रू फॉर ऑल टाइम वो तो ये है चेंज. तो चेंज को अगर आप बुनियाद बना लेते हैं अपनी मावाद तबीयत यानी आपकी मेटाफिजिकल असम्पशन तो जो है वो चेंज की है या मेटाफिजिक्स ऑफ चेंज है आपकी, तो फिर अकदार जो होंगे वो रिलेटिविस्टिक नॉइज है. समझा? ये मतलब ये कोई मैं ब्लफ नहीं मारता, यानी कि अगर आप देखें रेफरेंस अगर आप देना चाहें आर्ग्यूमेंट का कि इसके पीछे क्या दलील है, तो इसके पीछे दलील जो मैं दे रहा हूँ वो अफलातून की है, प्लेटो की, कोई आम आदमी की बात नहीं मैं कर रहा. प्लेटो का एक डायलॉग है थिएटेटस. थिएटेटस के अंदर थिएटेटस की सुकरात के साथ डिस्कशन है इल्म के ऊपर कि इल्म क्या है. तो थिएटेटस कहता है कि इल्म जो है वो बुनियादी तौर पर सेंस एक्सपीरियंस है. नॉलेज इज सेंस एक्सपीरियंस. یعنی کہ علم کیسے میں حاصل کرتا ہوں، علم حاصل کرتا ہوں ہوا کے سمسا کی بنیاد. تو افلاطون سقراط اس سے کہتا ہے کہ اچھا تم حواس خمسہ کو علم کی بنیاد مانتے ہو، تو تم شاید یہ بھول گئے کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو. یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم اچھائی اور برائی کا پیمانہ جو ہے وہ انڈیویجول کے اوپر رکھتے ہو، اور یہ اخلاقیات کا تصور ہے، اور یہ اخلاقیات اخذ کرتا ہے پروٹاگورس. یہ جو تصور علمیت ہے نا تمہارا کہ آل نالج از امپیریکل، یہ پرزیوم کرتی ہے خاص قسم کی اخلاقیات کو جو کہ پروٹاگورس سے نکلی ہے، جو کہتا ہے مین از دا میجر آف آل. اور پروٹاگورس یہ بات اس لیے کہتا ہے کہ پروٹاگورس کی جو اخلاقیات ہے وہ پرزیوم کرتی ہے ہیراکلائٹس کی میٹافزکس، اور ہیراکلائٹس کی میٹافزکس یہ ہے کہ آل از فلکس. تو تم دیکھو گے کہ مابعد الطبیعت سے اخلاقیات اور اخلاقیات سے علمیت، یا مابعد میٹافزکس سے اپیسٹمالوجی اور اپیسٹمالوجی سے ایتھکس، تو ایک کمبینیشن بن جاتا ہے. تو سقراط جو پکڑتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہارے علم کے تصور پہ بات نہیں کروں گا، پہلے تو میں بتاؤں گا کہ تمہارا اخلاقیات کا تصور بھی ٹھیک نہیں ہے اور تمہاری مابعد الطبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. وہاں سے جا کے پکڑتا ہے. تو ابھی جو ہم ابھی ہم ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کی پرابلمس کیا ہیں، ابھی تو صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاریخ میں جو تبدیلی ہے وہ ریپیٹنگ ہے. اسے اگر آپ اپلائی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف جگہوں پہ یہ اپلائی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. مثلاً جس طرح سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ بڑا اور پھر وہ بوڑھا ہوا مر گیا، اس کا دوسرا بچہ پیدا وہی بوڑھا ہوا بڑا ہوا مر گیا، تو اس کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ وہ پہلے گرو کرتا ہے اور پھر ڈیٹوریٹ کرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار، یہی ایک ہی چکر جو چل رہا ہے بار 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 بار، ہر ایجنسی کے اندر یہی چکر چلتا ہے. پھر ایک ریاست ہے جو کمزور ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، بہت طاقتور ہوتی ہے، پھر ڈیٹوریٹ کرتے ختم ہو جاتی ہے. سولائزیشن ہے گرو کرتی ہے ڈیولپ کرتی ہے پھر کمزور ہوتی ہے ڈیٹوریٹ ختم ہو جاتی ہے. زبان ہے گرو کرتی ہے ڈیولپ ہوتی ہے ڈیٹوریٹ کرتی ہے ختم ہو جاتی ہے. تو وہ بیسیکلی جو ڈائنامکس بتا رہے ہیں آپ کو، وہ ڈائنامکس یہ ہے کہ بھائی اصل چیز یہ نہیں ہے کہ گروتھ یا ڈیٹوریشن، اصل چیز ہے چینج جو امپورٹنٹ ہے. چینج زیادہ امپورٹنٹ یعنی کہ وہ پہلو ہے اس پورے کے پورے تاریخی عمل کا. تو واٹ ایکچولی یو شوڈ سیلیبریٹ، یو شوڈ سیلیبریٹ دا چینج. لیکن اس کے نتیجے میں جو اخلاقیات اور پیدا ہوگی وہ کیسی اخلاقیات ہوگی؟ جس میں اقدار مستقل نہیں ہوگی، کیونکہ بنیادی طور پر حقیقت کیا چینج، اس لیے نہ تو کوئی ویلیوز ایبسلوٹ ہوں گی، سرٹن ہوں گی، نہ یونیورسل ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو پروسیس ہے وہی چینج کا، تو ریلیٹیویٹی نکلے گی اقدار کی طرح، یعنی کہ جو ریلیٹیویٹی ہے ایتھیکل ریلیٹیویزم نکلے گا. ایز اف یو وانٹ ٹو لیو اے مارل لائف بٹ وٹ ایور موریلٹیز اینڈ ایتھیکل پرزمپشنز یو آر پرزیومنگ، دوز آر اسپیسیفک ٹو دی پروسیس آف دا چینج بائی ورچو آف چینج. تو چینج اگر حقیقت ہے تو اخلاقیات کے تصورات اور خیر و شر کے معیارات وہ سب تبدیل ہوتے رہیں گے. تو اس کو کسی خاص نہج پہ لے جانے کی کوشش جد و جہد آپ کریں گے تو وہ بنیادی طور پر جد و جہد ایک ریلیٹیوسٹک پروسیس کے اندر ہی کی کوشش ہوگی. مثلاً یہ کہ آپ دنیا میں بڑی بڑی تہذیبیں اور بڑی بڑی اخلاقیاتیں آئیں، تو ہیراکلائٹس سے پہلے بھی آئیں، اس کے بعد بھی آئیں، تو ہیراکلائٹس گئے دیکھو وہ تو سب ختم ہو گئے. تو چینج ہی ہوتا ہے، اصل چیز تو چینج ہی ہے، پرماننس کوئی چیز. یہ بیسک اس کا کنسیپشن آف چینج ہے. گو کے ہیراکلائٹس کی جو تصور ہے، جس قسم کی اخلاقیات یا ہیراکلائٹینین کنسیپشن آف ہسٹری جس اخلاقیات کو پروموٹ کر رہا ہے وہ ہے ریلیٹیوزم، جو کہ قریب ترین ہے کس کے؟ پروٹاگورینز کے. प्रोटागोरियंस कौन है जो कहते हैं मैन इज द मेजर ऑफ ऑल. आप आज की दुनिया पे नजर डालें, आप किसी को कोई सही बात बताएं तो कहता है मेरी मर्जी, मैं जो जिसको सही समझता हूँ, मैं एक अडल्ट मेच्योर इंडिविजुअल हूँ, मुझे आप क्या कौन होता है बताने वाले, ये पोप कौन होता है बताने वाला, मैं खुद करूंगा, ये मौलवी कौन है, ये पादरी कौन है, यू नो, ये सिर्फ मुसलमानों का या ईसाइयों का या यहूदियों का मसला नहीं. जो भी आपको कोई कुछ बताने की कोशिश करता है इसका मतलब है कि वो अपने आप को आपसे ज्यादा मेजर समझ रहा है, मेजर समझ रहा है. इफ मैन इज द मेजर ऑफ ऑल एंड आई एम अ मैन एंड इन माई ओन इंडिविजुअल कैपेसिटी आई एम फ्री टू डिटर्मिन माई ओन कंसेप्शन ऑफ गुड, हु द हेल ही इज टू टेल मी दैट वॉट शुड आई डू एंड वॉट आई शुड नॉट, हु आर यू, वाई शुड आई एक्सेप्ट यू, वाई शुड आई लिसन, आई एम द मेजर ऑफ ऑल. लेकिन ये कहां पर करता है, वो किस दायरे जिंदगी में ये करता है, क्या वो अपनी फिजिक के हवाले से ये कर सकता है कि मैं इज द मेजर ऑफ ऑल, क्या अपनी सेहत से मुताल्लिक वो ये कहता है कि ये डॉक्टर कौन होता है मुझे बताने वाला कि मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं, ऐसी की तहसील डॉक्टर मैं जो मर्जी आई खाऊं, नहीं डॉक्टर कहता है ये खाना बंद कर दो वरना तो मर जाओ, फौरन बंद कर दो. इसका मतलब डॉक्टर से अपने आप को मेजर नहीं समझता, ज्यादा नहीं समझता, ही कैन नॉट कंसिडर हिम मोर मेजर देन हिमसेल्फ है. क्यों? क्योंकि उसे अपनी जिंदगी अजीज है. क्या वो इकोनॉमिस्ट कहता है कि ये इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है तो वो क्या करता है, नहीं मैन इज द मेजर ऑफ ऑल, मेरी मर्जी करूंगा. वो इकोनॉमिस्ट के जो डिसीजन होता है, कम से कम जॉन स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट होते हैं उसके एक्सपर्ट ओपिनियन को सामने रखता है और अपना इरादा बदल देता है. क्यों? क्योंकि उसे अपनी माल का ख्याल हो, माल को इम्पोर्टेंट चीज समझता है. इसी तरीके से अगर कोई लॉयर है वो कहता है आपने अगर ये बोला तो इसके नजर में तो आप फंस जाएंगे और बड़े प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगे आपको, तो वो जो लॉयर उसको मशवरा देता हो या कहता है नहीं मैन इज द मेजर ऑफ ऑल, मेरी जो मर्जी आएगी मैं करूंगा. तो फिर बचता कौन सा डोमेन है जहां पर उनके दो दिल में आता है वो करता है, मैं मेजर ऑफ ऑल कब बनता है, कहां पे वो ये करता है, वो करता है इखलाकी मामला, यानी कि मैं एहतराम करूं या एहतराम ना करूं, मैं मोहब्बत करूं या मोहब्बत ना करूं, मैं कुर्बानी दूं या कुर्बानी ना दूं, मैं किसी की बड़ाई तस्लीम करूं या ना करूं. क्यों? इसलिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. एहतराम करूं या नहीं करूं इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अगर मैं देखूंगा इससे एहतराम ना करने के नतीजे जज का मैं एहतराम करूंगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी. हमारे एक जानने वाले हैं, वो जब भी कोई उनको मौका मिलता है, लॉयर है, जब भी उनको मौका मिलता है तो वो इस पे एतराज उठाते हैं, ब्लास्फेमी जो है वो क्यों, क्या मतलब, क्या ब्लास्फेमी, जुल्म है, ये है वो है, फला ढिमकाना. लेकिन जब वो कोर्ट में एंटर होते हैं ना, कोर्ट में एंटर होते हैं तो वो पहले झुकते हैं, माय लॉर्ड, जिसका बिल्कुल ऑक्सफोर्ड यानी कि 18वीं सदी के लॉयर्स नहीं हो, 18 सेंचुरी के लॉयर, लंदन से ही पढ़ा, माय लॉर्ड. और हर जुमला में वो एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये कि अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो तो क्या मैं ये पेश कर सकूं, यानी कि पहले वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, फिर पूछते हैं क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्मे में तो ये नहीं आ रहा तो मैं ये पेश करूं आर्ग्यूमेंट, तो कहता हाँ ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्मे में नहीं आ रहा तो पेश. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो क्या है, व्हाट यू शुड एंश्योर द सैंक्टिटी ऑफ द कोर्ट. अगर तुमने कोर्ट की सैंक्टिटी को ही नहीं माना तो फिर तुम्हें इंसाफ तो नहीं मिला। इंसाफ जिससे तुम मांगना चाहते हो उसकी तो तुम्हें तकद्दस को पामाल नहीं करना ना, है ना। सीधी सी बात है, अगर तुम एक अदालत में तुम रुजू कर रहे हो और एक अदालत में केस लड़ रहे हो, उसी अदालत से तुम्हें इंसाफ की तवक्को है तभी तो तुम केस लड़ रहे हो। अब अगर तुम अदालत की तौहीन करो तो फिर ये एक अहमकाना बात है कि उसी की तुम तौहीन भी कर रहे हो और उसी से तुम इंसाफ मांग रहे हो, कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म है। सही, तो मैं ये नहीं कह रहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना चाहिए, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक आदमी कहता है भाई ये जो प्रॉफिट है इसी के जरिए मैं मेरी जिंदगी और मौत का तयन होगा और मरने के बाद भी मेरी जिंदगी और मौत है इसी के जरिए मुझे पता चला है। अब उसकी कंटेम्प्ट कैसे करे वो, तो कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म है ना। खैर का सोर्स ही वही है, उसको मिला ही वहीं से, उसकी तो सैंटिटी को इंश्योर करना है उसको। और वो कहता है कि ये मेरी अकेले की नहीं है, पूरी सोसाइटी की रिस्पांसिबिलिटी है, वो सब लोग कम से कम जो इस प्रॉफिट को मानने वाले हैं उनमें से कोई आदमी भी ये ना करे, कंटेम्प्ट ना करे ना कोर्ट की। यानी कि कोई वकील कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकता ना वकील, और अगर वकील के मुंह से गलती से कोई बात निकल जाए, गुस्से में हो जाए, है यानी कि एक अदालत के अंदर केस हुआ अमेरिका में, उसमें उसने केस जीता और केस जीतने के बाद बहुत मशहूर एक आदमी है जोसेफ राज, पॉलिटिकल थेरेपिस्ट भी है लॉयर भी है, उसमें उसे कमाल ये है कि वो एग्जाम्पल्स देता है, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स। वो इंडिविजुअलिस्ट लिबरलिज्म का कायल नहीं, वो कहता है कि भाई कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस होती है, लिहाजा आजादी के नाम पे कोई ऐसा काम करने को पसंद नहीं करता जो कि कम्युनिटी के जनरल कंसेंशुअस गुड को वायलेट करता हो, जैसे प्रोस्टिट्यूशन है, ये है वो है फलां, बहुत सारी चीजों को सब रिजिस्ट करता है। क्रिश्चियन है वो, उनके क्रिश्चियनिटी के साथ क्रिश्चियन मोरालिटी को वो कहता है उसकी तौहीन नहीं करो, ये हमारे तारीख है और हमारी तहजीब है और तो हर चीज को तुम निकाल दो तो फिर क्या बचेगा, तो उसका एक इम्पैक्ट। तो वो एक आदमी ने क्या किया, एक आदमी ने केस लड़ा और केस लड़ने में उसने केस जीत लिया, वकील ने केस जीत लिया। केस जीतने के बाद बच्ची जो थी, बच्चे जो थे वो माँ के हवाले कर दिए गए, माँ की तरफ से उसने केस लड़ा। तो माँ का जो केस उसने जीता था वो मनूवरिंग के जरिए जीता था, यानी कि सबको पता था उसकी माँ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। तो अगर अदालत में आप ये साबित कर दें कि भाई इस औरत के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, तो बाप जो है वो तलाक भी दे देगा और बच्चे भी अपने पास रखेगा। तो उसने केस जो जीता वो ये जीता कि दरअसल ये औरत तुम्हारी बीवी है ही नहीं, क्योंकि जब तुम्हारा उससे निकाह हुआ था उस वक्त ये 18 साल से कम उम्र थी, लिहाजा अकॉर्डिंग टू दी अमेरिकन लॉ तुम्हारी इससे शादी ही नहीं हुई। तो अगर तुम्हारी इससे शादी नहीं हुई तो ये तुम्हारी बीवी ही नहीं है, तो चूंकि ये तुम्हारी बीवी ही नहीं है लिहाजा अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसके हुए तो इसकी बुनियाद पर तलाक का सवाल है। बहुत इंटेलिजेंट था, उसने केस जीत लिया, केस जीतने के बाद बच्चे भी बीवी के हवाले कर दिए। मगर जो लॉयर था, जो बाद में इसके ऊपर मूवी बनी, लॉयर लायर, लायर लायर पे मूवी बनी, उसमें ये हार्ड केस है, ये ओरिजिनली ट्रू स्टोरी है ये, कि वो केस जो केस है एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। उसने केस जीता और केस जीतने के बाद उसने कहा कि भाई ये जो अदालत से उसने कहा कि देखें केस तो मैंने जीत लिया लेकिन बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को बाप के पास ही रहने दिया, क्योंकि माँ ठीक नहीं है। मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो कि इट्स द प्ले ऑफ द लॉ, कानून के दो क्लॉजेस को मैंने प्ले कर कर उसको बचा लिया। तो जज ने कहा तुम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, मैंने जस्ट डिसीजन लिया। उसने कहा नहीं ये जस्ट नहीं है, इट्स अनजस्ट। अनजस्ट चलो इसको ही बन सकता है, लॉयर को ही बन सकता, लेकिन सब लोगों को पता है, कोई भी देखे हो कहेगा नहीं वो सही कह रहा था कि वो माँ ठीक नहीं है, बदमाश है, बच्चे उसके पास नहीं जाने चाहिए, बाप शरीफ है, अच्छा आदमी है, उसके पास जाने चाहिए बच्चे, बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा अगर जो बदमाश औरत के साथ रहे। लेकिन उसके बावजूद अकॉर्डिंग टू द लॉ जज ने जो फैसला किया वो बाय वर्च्यू ऑफ लॉ किया, वकील ने जो किया बाय वर्च्यू ऑफ प्लेइंग टू डिफरेंट क्लॉजेज ऑफ द सेम लॉ किया, लेकिन सबको पता है इट्स अनजस्ट। जो जो राज बताता है, राज कहता है समटाइम्स मोरालिटी एंड लीगैलिटी डज नॉट मैच। ये थोड़ी है हमेशा लॉ जो है मोरालिटी को मैच करेगा। तो अब अगर वो मैच नहीं कर रहा तो फिर अब आप क्या करो, आप कहो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट की सैंक्टिटी को अगर किसी ने वायलेट किया तो फिर इस अदालत से इंसाफ की तवक्को किस बुनियाद पे करता है। तो अगर कोई आदमी कहता है कि भाई मैं ये कहता हूँ कि ब्लास्फेमी का लॉ होना चाहिए, तो उसकी जस्टिफिकेशन ये कि तुम अपनी इस जिंदगी और उस जिंदगी का जो रेफरेंस पॉइंट मानते हो गॉड को, इस बीइंग के हवाले से मानते हो, उसी को तुम गालियां बको और उसी की तौहीन करो और उसकी बदमाशी करो, तो फिर तुम कैसे, मतलब क्या, फिर तुम क्या कर रहे हो, किस तरह का माशरा है ये।